الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. حضرت قرآن مجید کے مختلف صورتوں کے مختلف مضامین ہیں، مختلف عنوانات ہیں، مختلف اینگلز سے، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا سامان جو کہ ابدی ہے، آفاقی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے عطا فرمایا ہے. معاملہ چاہے انفرادی ہے یا اجتماعی، ہر شخص کے نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی کسی انسان کے ذہن میں کوئی تشکیق، کوئی ایسا معاملہ جو کہ اس کے سامنے گمراہی کو اور ہدایت کو علیحدہ کرنے کے حوالے سے موجود ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ دنیا جو ہے اس کام کے لیے محتاج ہے اور محتاج رہے گی، ہمیشہ ہی محتاج رہے گی. اس لیے کہ ڈسکریشن ہی صرف خالق کی ہے، مالک کی ہے، اللہ کی ہے کہ جس نے ہدایت کو ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے جو کہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کو اس قرآن کے ذریعے ہمارے لیے واضح فرما دیا. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہے، یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، المیہ ہی کہا جا سکتا ہے، بہت ہی سطحی سا تعلق ہے، بہت ہی واجبی سا تعلق ہے جو ہماری عظیم اکثریت اس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت کے ساتھ رکھے ہوئے. اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کا شمار ہو جن کو ہم عوام کہتے ہیں، خواص یعنی وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ساز و سامان بھی موجود ہے، آسائشیں بھی موجود ہیں، وہ سب سے زیادہ ایسی چیز کے جس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے وہ المیہ کی بات ہے، وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید خود اس بات کو اس طرح سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اف بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، क्या ये वो हदीस है, क्या ये वो किताब और कलाम है और पैगाम है अल्लाह का कि जिससे तुम मुदाहनत करते हो, बेपरवाही इख्तियार करते हो, और तुमने अपना वतीरा और तुमने अपना तरीका ये बना रखा है कि तुमने इसको झुटलाते ही रहना है। कुरान याद उस वक्त आता है जिस वक्त खुद अपने ऊपर तकलीफ मुश्किल आए, या किसी को तकलीफ मुश्किल में देखकर हम लोग उसको या उसके लवाहिकीन को ये तलकीन करते हैं कि फला फला सूरत पढ़ के फूंक दी जाए। इसलिए फरमाया कि फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, गोया अब तुम्हें कुरान उस वक्त याद आएगा जब तुम्हारे जान जो है वो हलक तक पहुंच चुकी होगी। कहने का मतलब यह है, सूरतुल हदीद कुरान मजीद की 27वें पारे की सूरत है, आखिरी सूरत है। होना तो ये चाहिए कि कुरान मजीद हमारे सामने पूरा साल जस्ता जस्ता उसके असबाक, उसकी मनाजिल जो के साथ तय की गई हैं, उसके साथ हम भरपूर ताल्लुक रखें, किसी भी और लिटरेचर के मुकाबले में, किसी भी और मजलिस और किसी भी और महफिल के मुकाबले में हमारे लिए दुरूस कुरान की महाफिल और मजालिस अहम तरीन हो। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारा इंतजार होता है, और अभी भी आप देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। 11 मार्च को पहला रोजा है और हमने ये सुना है कि जिसने सबसे पहले किसी को रमजानुल बारी की आने की खुशखबरी सुनाई उस पर जन्नत वाजिब हो गई। हदीस का मफहूम बहरहाल ज़ईफ हदीस, ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक तहकीक के मुताबिक मौजू है। लेकिन हम लोग बस इसी पे खुश हैं, खबरों के साथ ही खुश हैं, अमल के साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं। वजह कुरान मजीद तो कलाम ही ऐसा है कि इंसान पढ़े तो फौरन अमल की तरफ रागिब होता है, और अमल की तरफ कुरान रागिब करवाता है। किसी भी इंसान को अगर वाकईतन वो तालिब हिदायत है, कुरान मजीद अपनी तरफ खींचता है। बहुत ही अहम सूरह मुबारका है सूरतुल हदीद। आजकल जो हमारे हालात हैं मुल्की और गैर मुल्की बैनुल अक्वामी, उसका मर्शिया हर शख्स जानता भी है, उसका आलमिया हर शख्स जानता भी है, और हर जमात अपने अपने अंदाज से उसको बयान भी करती है, हर तंजीम अपने अपने अंदाज से उसका सलूशन भी बयान करती है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि अगर हमारा वाकईतन शऊरी ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए तो फिर वो जो मसला हमारे सामने है उसकी वजूहात भी सामने आ जाती हैं, जिस मामले में हम हैं उस कैफियत का बयान भी आ जाता है, और अगर हम इससे निकलना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी बिल्कुल क्लियर, जिसमें मुझे और आपको कोई इबहाम ना हो, वो भी क्लियर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन क्या करें, हमने तो सूरतुल हदीद को कभी खोल के पढ़ा नहीं, उसका तर्जमा सुना नहीं। ये वो सूरह मुबारका है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बिल्कुल डायरेक्टली खिताब करते हुए उनके जो हालात और वाकयात हैं ऐसे बयान किए हैं जैसे गोया आज के दिन के लिए कुरान उतरा है। अल्लाह ताला की जो कुदरत कामिला का बयान इस कुरान, इस सूरह मुबारका के अंदर इब्तिदा में हुआ है, वो किसी भी और सूरत में इस शान से नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की सिफात कुरान मजीद में जा बजा बयान की जाती हैं, और उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ उसके वसाइफ हैं, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ यहां पर उन सारी की सारी अल्लाह ताला की कुदरतों को यहां पर इकट्ठा किया गया है। और फिर डायरेक्ट कॉल है, बराह रास मुतालबा है, आमीनू बिल्लाही व रसूलिही, वो ईमान वालो ईमान लाओ। इस बात को जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब जब करते हैं तो मौका महल देखकर इस बात का फैसला करना पड़ता है कि यहां पर खिताब दरअसल ईमान वालों में से किस गिरोह के साथ है। कभी ऐसे होता है कि हकीकी ईमान वालों से खिताब हो, कभी ऐसे होता है कि ज़ौफ़ ईमानी का शिकार लोगों से खिताब हो, और कभी ऐसे भी होता है कि उनसे बिला वास्ता नहीं, वास्ते के साथ खिताब होता है, जो कि मुनाफिक है। कि जब तक तुम्हारे पास मौका है, मोहलत है, वक्त है, सांस चलता है, देखो अपने तर्ज अमल का जायजा, कहीं तुमसे गलती हो रही, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। अगर तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है और तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो देखो कहीं तुम्हारे से कोताही हो रही है, कुछ है ना ऐसे कि तुम्हारी दुआएं रद्द हो रही हैं, कुछ है ना ऐसे कि तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है तुम्हारी दादरसी करने वाला कोई नजर नहीं आता। शायद उसकी वजह यह है कि जिसने दादरसी करनी थी उसको तुमने नाराज कर रखा है, और शायद नहीं यकीनन ऐसा ही है। इसलिए कि जब इंसान को अल्लाह ताला आजमाते हैं ना, तो वह आजमाइश अगरचे बज़ाहिर वैसे ही होती है जैसे इंसान के ऊपर मुसीबत हो, लेकिन दिल उसका मुतमईन होता है कि मेरा रब मुझे आजमा रहा है, मैं जो कर सकता था मैंने किया, मुझे वो नतीजा नहीं मिला जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह ताला उसका अजर अल्लाह अपने पास देखा। मामला ये है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते दिल गैर मुतमईन होते हैं, और नजर आ रहा होता कि अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा, खुद हमारी ही कारिस्तानियां हैं, खुद हमारे ही करतूत हैं कि हम देखते नहीं क्या ये दिस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल, क्या हम देखते नहीं कि हर दीवार हमें मुंह चिड़ा के कह रही है कि हां तुम ही जालिम हो। किस हैसियत में हो, कहां बैठे हो, क्या बेचते हो, क्या बोलते हो, क्या दिखाते हो, देखते नहीं कि यहां पर यूरोप के अंदर नेदरलैंड के अंदर इंतखाबात होते हैं और वहां पर वो शख्स वो मकरूह इंसान कि जिसने कुरान मजीद को जो है जलाने की बातें की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरी कैचेस बनाए, उसकी जमात जो है वो कामयाब होती है, क्या कर लेंगे आप? कभी नक्शे में देखा है नीदरलैंड को कितना है, इतना सा लाहौर कसूर को मिलाए तो शायद उतना बनता है। बड़े बड़े मुल्क हैं साथ में, तुर्की है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो क्या हो गया, क्यों हो गया? अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यअनिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, क्या आप भी वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान का दावा करते हैं? या मैं खास तौर पर करता हूं यहां पर ईमान वालों से मुराद जो ईमान वाले अपने आप को कहलाते हैं, क्या अभी भी वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान के दावेदार हैं कि डर जाए उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और उस चीज के लिए जो अल्लाह ने नाजिल किया हक में से? क्या मैं और आप नहीं समझते कि अल्लाह हक है, इस्लाम हक है, कुरान हक है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं? अगर हम ये समझते हैं तो फिर हक गालिब क्यों नहीं है, हक गालिब क्यों नहीं है? इसलिए कि फरिश्तों ने गालिब नहीं करना, इंसानों के जरिए होना है। यही तो मेरी और आपकी आजमाइश है। हम नहीं कर रहे इसलिए वो हक हक नहीं है, मकलूब है। हक वो होता है जो साबित हो, जो गालिब हो, जो जाहिर हो, जो माना जाए, जो वाजिब हो, जिसकी नजीर ना हो, जिसके सामने को टिकता ना हो। आज तो बात वाइस वर्षा है, आज तो बात वाइस वर्षा है कि ऐसा नहीं ऐसा ही है। फिर क्या हुआ? यह हुआ कि हमारे दिल अल्लाह की याद की तरफ राकिब नहीं, हम अल्लाह के दिए हुए कलाम की कदर नहीं करते, अल्लाह के दिए हुए दीन की कदर नहीं करते। यह है मसला। फरमाया वला यकूनु कल्लज़ीन ऊतुल किताबा मिन क़ब्ल, उन लोगों के मानिंद न हो जाएं ये जिनको दी गई थी किताब इससे पहले, फ़ताल अलैहिमुल अमद, उनको तो किताब बहुत पहले दी गई थी, उन पर तो मुद्दत गुजर गई। और मुसलमानों तुम्हारे सामने तो कुरान उतर रहा है, मोहम्मद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, और आज भी कितना वक्त गुजरा है? 1400 सदियां, कुछ ज्यादा वक्त नहीं है। तो रात इंजील को नाजिल हुए बहुत वक्त हो चुका था, मुद्दत गुजर गई थी। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, इनके तो दिल हो गए कसत, इनके दिल तो हो गए सख्त, इनके माने ना हो जाना। लेकिन आज हमारी दौड़ किस बात पे लगी हुई है? हम इनको राजी करना चाहते हैं। भाई और बताओ, और कौन सी शराइत लगाएं, और कौन सी शराइत लगाएं, और कौन सी शराइत लगाएं? राजी हो गए कि नहीं? कुछ टका टोकरी हो जाएगा कि नहीं? कुछ मिल जाएगा कि नहीं? भिखारी हैं हम, क्यों? भीख मांगनी थी उससे जो देने वाला है, भीख उससे मांग रहे हैं जो खुद भिखारी है, वो क्या किसी को देगा? जो खुद मोहताज हैं उनसे मांगते हो, जो देने वाला है उसको नाराज करते हो। मसला यह है, मामला यह है। फरमाया वकसीरु मिनहुम फासिकून, इनकी अक्सरियत तो फासिक नाफरमान है। इनसे क्या हिदायत दोगे, इनसे क्या हासिल करोगे? और टॉक ऑफ द टाउन क्या है? कहीं पर आप बैठे उस फलां पार्टी के साथ ये हो रहा है, फलां पार्टी के साथ ये हो रहा है, फलां दुनिया में ये हो रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे जनाब? हम तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, वो तो वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। कहीं पर ये टॉक ऑफ द टाउन आपको नजर आएगी कि रब को राजी कर लो? रब राजी तो जग राजी है ही नहीं, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। और भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं फासिक हैं, नाफरमान हैं, नाकाम हैं, ना अहल हैं, रद्दी लोग हैं। लेकिन अगर तुम उनके पीछे लगे हो तो फिर अल्लाह ताला जाहिर सी बात है तुम्हें उस वक्त ही आगे लेकर आएगा जिस वक्त तुम अल्लाह ताला के मन की जिंदगी बसर करने का फैसला करोगे। अगर अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल में यह एहसास पैदा कर दे तो फिर हम बहुत पीछे रह गए, कोई पीछे नहीं रहे, कुछ नहीं होता। يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, जान लो, देखो तो सही, अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को उसकी बंजर होने के बाद जिंदा नहीं करता। जानो कि अल्लाह ताला जिंदा कर देता है जमीन को उसके मरने के बाद, बंजर अल्लाह ताला उसको दोबारा से आबाद कर देता है। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हर शख्स देखता है कि अल्लाह ताला मुर्दा दिलों को जिंदा नहीं कर सकता, कर सकता है। वह अल कादिर, वो कुदरत रखने वाला है। फरमाया قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون, अल्लाह ताला हम सब ने, हमने तो वाजह कर दी हैं तुम्हारे लिए निशानियां, शायद कि तुम अकल से काम लो। ये अल्लाह ताला जो मगज दिया है ना, लुब दिया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम डिग्रियों पर डिग्रियां करते चले जाएं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें बड़ी अकल दी गई है कि तुम सोशल मीडिया के अंदर अपने व्यूअरशिप को बढ़ाकर अपने लिए पैसों का सामान कर लो और फिर कहो देखो जी ये हैं सर अकल वाले, ये दुनिया के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़ अल-लैल वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض اقل من هوش من لب والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر پہلو میں بیٹھے کھڑے چلتے پھرتے اللہ کو نہیں بھلاتے اللہ کو نہ بھلانا اور یاد رکھیے گا اللہ کو نہ بھلانے کا مطلب کیا ہے نمبر ایک ایمان ہو نمبر دو یقین ہو इतना काफी नहीं है, इसका तकाजा यह है कि भरोसा करो उस पर। ईमान किसी हैसियत का नहीं है अगर यकीन ना हो, यकीन का फायदा कोई नहीं है अगर तवक्कुल ना हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तो वाजे कर दी है इनके लिए निशानियां, इन लोगों के लिए, शायद के लोग अकल से काम लें। करना क्या है, रास्ता क्या है? सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना है, अपने अकीदे को, अपने नजरिए को, अपने जहन को لا اله الا الله محمد رسول الله کے تابع کرنا ہے۔ وہ کلمے کو یاد رکھیں، کلمہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کلمے کا ترجمہ اگر میرے اور آپ کے سامنے آ جائے نا تو دنیا چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی الہ نہیں ہے، الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے توقع رکھی جائے، جس کے پاس جایا جائے، جس سے کچھ حاصل ہوتا ہو، جس سے امید بنائی جائے، वो इलाह है। इल्लल्लाह, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। रास्ता कौन सा इख्तियार करना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रास्ता ये है, फरमाया इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाती, बेशक खूब सदका करने वाले मर्द, बेशक खूब सदका करने वाली औरतें, व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और जो अल्लाह को कर्ज देते हैं बेहतरीन कर्ज, युदाअफु लहुम, अल्लाह ताला उन्हें बढ़ा चढ़ा कर वापिस करे, वलहुम अजरुन करीम। बढ़ा चढ़ा कर कितना? एक खजूर दी, एक खजूर रब की राह में दी, रब को राजी करने के लिए दी, अल्लाह ने उसको अपने पास महफूज किया, अल्लाह ने उसकी परवरिश की, अल्लाह ताला वापस कैसे करेगा, ए फला इब्ने फला ये तेरा अजर, या अल्लाह मेरा अजर, मैंने तो ये कुछ नहीं किया था, तूने अपनी हैसियत में किया था, मैं अपनी हैसियत में दूंगा। ये उहद पहाड़ जितना, ये है इज्जत वाला अजर। किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को एहसान जतलाना नहीं, तू अपने हैसियत में कर, मैं अपनी हैसियत में दूंगा। वलहुम अजरुन करीम, उनके लिए बाइज्जत बदला है। देखिए सदका किसको कहते हैं, सिद्क से निकला है, सच्ची चीज। एक होता है इंसान सादिक, सच बोलने वाला, एक होता है सिद्दीक। सिद्दीक किसको कहते हैं, जो उस चीज को सच मानता है जो खुद सच होती है। यानी किसी ने किसी को कही कुछ बात कही, वो बात ही झूठी थी, उसने झूठी बात जो है वो आगे बयान कर दी, वो तो सच्चा हो गया, लेकिन बात ही झूठी थी तो आगे जो प्रोपेगेशन हुई वो झूठी की हुई ना। सिद्दीक वो है जो अल्लाह ताला के पैगाम को हक मानते हुए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपने आप को पेश करता है, ये है सिद्दीक। सच्चा, हम सच्चे नहीं रहे, झूठे हैं, झूठे हैं, दोगले, इंफरादी तौर पर भी, इज्तमाई तौर पर भी। सबसे बड़ा हमारा कसूर मुनाफिक होना है। खर्च करना, खर्च करना तो इसकी क्रॉलरी है, एक पार्ट है इसका। अपने आप को सच्चा बनाओ, तुम्हारा वजूद गवाही दे के तुम सच्चे हो, झूठे नहीं हो, दूसरों के लिए अच्छे बनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन औ युअल्लिमुहुन फयअमलु बिहिन। है कोई जो मुझसे कुछ कलमात सीख ले फिर खुद उस पर अमल करे, या किसी को सिखा दे कलमात और सिखाने पर वो शख्स उस पर अमल करे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं साथ साथ रहा करते थे, साये की तरह साथ रहते थे, कब ईमान लाए, खैबर के मौके पर ईमान लाए, सबसे ज्यादा हदीस से आपसे मरवी है। कहने लगे मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाइए, मैं आपसे लूंगा। फअखذ بيدي فعد خمسا, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ा और पांच बातें गिनवाई, फरमाया इत्तक المحارم كنت اعبد الناس, देख अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बच के रहना, उस वक्त तू उस अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा बन जाएगा। सच्चाई की डेफिनेशन है, उसको खोल के बयान कर रहे हैं। इबादत ये थोड़ी होती है कि नमाजें पढ़ी जाओ, रोजे रखी जाओ और अल्लाह ताला की जो नाफरमानी है उसके अंदर भी पड़े रहो, नहीं ऐसा नहीं, महारिम से बचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वर्ति बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अगदनास, जो अल्लाह ने तेरे लिए मुकर्रर कर दिया है उस पर राजी रह, उस पर राजी रह। अगर तू ऐसा करेगा ना, लोगों में सबसे ज्यादा अमीर तू होगा। हम देखते नहीं कि हम बड़े बड़े बिलियनर्स को देखते हैं, इत्मीनान नहीं है। हलमी मजीद, हलमी मजीद, हलमी मजीद, क्यों? जो अल्लाह ने दिया उसी पर राजी रह। क्या मतलब? हलाल से कमा और अल्लाह की राह में खर्च कर, अगननास, सबसे ज्यादा गनी बन जाएगा। और अगली बात, वाहसिन इला जारिक तको मुमिना, माशरती जिंदगी को भी एड्रेस किया है, अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक कर तो मोमिन होगा। चौथी बात, वाहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुम मुस्लिमा, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, जो अपने लिए पसंद करते हो वो लोगों के लिए पसंद करो, तब मुसलमान हो गए। आखिरी बात, वला तुक्सिर ज़िहका, वला तुक्सिर ज़िहका, देख बहुत ज्यादा हंसी ना कर किया कर, ठट्ठे ना लगाया कर। फ़इन्न कसरत ज़िहक तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए कि ठट्ठे लगाना, बेपरवाही वाली जिंदगी बसर करना दिलों को मुर्दा कर देता है। तो ये है सिद्क़ व सफ़ा की बातें जो अल्लाह ताला यहां बयान करते हैं। अपने तर्ज़ जिंदगी को थोड़ा रिव्यू तो करें, मैं भी करूं आप भी करें, गलती हो रही है, कोताही हो रही है, कमियां हैं, इन कमियों को दूर किए बगैर अल्लाह ताला को नाराज करके कैसे जिंदगी बसर होगी, कैसे हालात तब्दील होंगे। نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر بھی دے گا اور بہترین ان کے لیے ہوگا باعزت بدلہ. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اور یہ صدق و صفا والے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے رسولوں پر, یہی لوگ ہیں سچے راس باس پکے ایمان والے. والشہداء, اور یہی لوگ ہیں جو شہید ہیں. اب شہید سے مراد ایک تو مقتول فی سبیل اللہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. ذروۂ سلام یہی ہے, ذروۂ سلام یہی ہے, اسلام کا ذروۂ سلام چوٹی یہی ہے, کوئی شک نہیں. الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہے. لیکن شہید وہ بھی ہے جو شہادت کی تمنا دل میں رکھ کر اپنی زندگی کو شہید کی طرح بسر کرتا ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ جس کا وجود, جس کا گفتار, جس کا کردار, جس کا اخلاق, جس کا برتاؤ, جس کی زندگی کا ایک جو فوکس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, وہ بھی شہید ہے. اس لیے کہ وہ گواہی دے رہا ہے, وہ گواہی دے رہا ہے, اس کے وجود سے گواہی ٹپکتی ہے. والشہداء عند ربہم, یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں, اپنے رب کے پاس موجود ہوں گے. اور فرمایا لہم اجرہم ونورہم, ان کا اجر بھی محفوظ, ان کا نور بھی محفوظ. بدلہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے گا, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی آگے ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے اس کے رب نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اللہ نے دوسری سورت میں فرمایا. اور لوگو یہ انجام حاصل کرنے کی تمنا دل میں رکھو, تمنا دل میں رکھنے والوں کو یہ تمنا دل میں رکھنی چاہیے وہ کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے, ان چیزوں کے جو فانی ہیں, جس کو تم اپنا کہتے ہو اور آخری سانس جب آئے گا وہ اپنا بیگانہ ہو جائے گا. وہ حدیث میں فرمایا نا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے پوچھا ایو صدقت اعظم اجرا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے وہ کون سا صدقہ ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى, اس وقت خرچ کر جب تو صحیح ہے, سالم ہے, تجھے خرچ کرنا جو ہے مشکل لگتا ہے کہ فقر آ جائے گا, اور بچا کے رکھنا اچھا لگتا ہے کہ میرے پیسے بڑھیں گے. بلا تم ہل, دیکھ اس وقت تک انتظار نہ کر, حتی اذا بلغت الحلقوم, یہاں تک کہ جان حلق تر آ جائے. فقلت لفلان انقضا ولفلان انقضا, اور پھر تو یہ کہ یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو. فقط کان لفلان, اب تو تیرا ہے ہی نہیں, ان کا ہی ہے. جو اپنا ہے نا وہ وہی ہے جس کو اللہ کے ساتھ سودا کر کے اپنے لیے جاری کر لیا, وہی اپنا ہے, باقی بیگانے ہیں, باقی اپنے نہیں ہیں. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے جھٹلایا. انکار سے مراد عقیدے کے ساتھ انکار کر دیا, نہیں مانتے, وہ پہلا سٹیپ ہے. باندھنے کے بعد عمل سے انکار کیا, وہ تکذیب ہے. اس بریکٹ کے اندر ہم سب لوگ بھی آ سکتے ہیں. مانا لیکن ماننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا, یہ تکذیب ہے. فرمایا اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہیں جہنم والے, یہ ہیں دوزخ والے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ ہمارا جو ماحول ہے اس کا بیان بھی ہے ان آیات میں, امید بھی ہے, رب سے مایوس نہیں ہونا. وہ رب تو بہت وسیع ہے, رحمت وسیع وسیع, ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. آج فیصلہ کرو, مردہ دل زندہ ہو جائیں گے, مردہ زمین بنجر زمین پھر دوبارہ تر و تازہ ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو صدیق بناؤ, سچا بناؤ, نیت بھی اچھی ہو, توبہ بھی کرتے رہو, اخلاق بھی اچھے ہوں, کردار بھی اچھا ہو, عمل بھی اچھا ہو, اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پرو ایکٹیو بنو, اللہ کے دین کو نافذ و غالب کرنے کی کوشش کرو. یہی صدیقیت ہے, یہی مقام شہادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پریس ریلیز سن لیجئے. حماس کو چار روزہ جنگ بدی کے دوران یہودیوں کی روایتی مکاری سے ہوشیار رہنا ہوگا. یہ بات تنظیم اسلامی کے قائم مقام امیر اعجاز لطیف صاحب نے ایک بیان میں کہی. उन्होंने कहा कि इसराइल ने 48 दिन तक गजा पर वहशियाना बम्बारी की और जमीनी हमले भी किए। मीडिया में बताए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे और औरतें हैं। गजा की दो तिहाई आबादी बेघर हो चुकी है। बड़े पैमाने पर हस्पताल, स्कूल, पनाहगुजीन कैंप तबाह कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 रोजा जंगमंदी के दौरान फलस्तीनी मुसलमानों को इसराइल के फरेब और मक्कारी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। हकीकत यह है कि सहूनियों और यहूदियों की तारीख है कि वह हर मोड़ पर धोखा देते हैं और इंतहाई मक्कारी के साथ चाले चलते हैं। अपने किए हुए वादों से मुनहरिफ हो जाना उनके सरिश्त में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुसलमान ममालिक को अब बड़े पैमाने पर गजा के महसूर और मजबूर मुसलमानों के लिए इमदादी कार्रवाईयों का आगाज करना होगा। उन्हें खुराक, अद्वियात, बिजली, गैस, तेल और दीगर बुनियादी जरूरियात जिंदगी पहुंचाने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इस बात को खसूसी तौर पर नोट कीजिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक है, जिस पर आपको ट्रस्ट है, रोके नहीं। इस वक्त जरूरत है और ये जरूरत उनकी नहीं है, हमारी है। कभी कोई लेने वाला ही मोहताज हुआ है, देने वाला मोहताज होता है, इसलिए कि उसकी लायबिलिटी होती है। देने वाले जरूर दें, उतना दें जितना अल्लाह ताला ने उनकी हैसियत रखी है। उन्होंने खबरदार किया कि इसराइल और उसके इत्तेहादी इमदाद की आड़ में सहूनी एजेंट गजा में दाखिल करने की कोशिश करेंगे, जिसको रोकने के लिए गजा के मुजाहिदीन को चौकस रहना होगा। फिर यह कि मुसलमान ममालिक का मीडिया और साहिबान अक्ल दानिश इसराइल को अमन का दाई करार देने की पुरफरेब कोशिशों का भरपूर अंदाज में रद्द करें। उन्होंने कहा कि इसराइली वजीर आजम का यह कहना है कि वह हर सूरत अपना हदफ हासिल करेंगे इंतहाई तशवीशनाक है। गोया ग्रेटर इसराइल के क्याम का वाज़ेह ऐलान किया जा रहा है, लिहाजा वो मौका पाते ही फिर गजा पर हमला करेंगे। मुसलमान ममालिक के सरबराहान को यह हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए कि इसराइल का अगला हदफ मुसलमान ममालिक ही होंगे। वो ये भी याद रखें कि रोज़े क़यामत अल्लाह के यहां जवाबदेह होंगे। लिहाजा सब मुत्तहिद होकर फलस्तीन के दिफा और इसराइल के मजमू मकासद को नाकाम बनाने के लिए इकदाम करें। यह प्रेस रिलीज जारी कर रहा है मोहतरम अयूब बेग मिर्ज़ा साहब की तरफ से, जो मरकजी नाज़िम नशर इशाअत तंज़ीम इस्लामी पाकिस्तान है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।